यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी सम्मत 2050 तदनुसार दिनांक 10 अगस्त सन 1993 को सायं लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान फीनासर में हुआ। राम
पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नारायण नारायण।
आज का आनंद बहुत विलक्षण है। भगवान के प्रकट होने का है। हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं तो इसमें जन्म का भगवान का जन्म वो कैसा है। अजोपि सन्नद्य आत्मा भगवान ने लिखा है, अज होते हुए अविनाशी होते हुए भूतों का ईश्वर होते हुए प्रकृति को अपने वश करके योग माया से प्रकट होता हूँ। तो भगवान का जन्म नहीं, भगवान के तो प्रकट होना होता है। जैसे सूर्य हमारे को दिखने लगता है, हम कहते हैं सूर्य उदय हो गया, तो उदय हो गया तो इसका अर्थ नहीं कि सूर्य का जन्म हो गया। सूर्य भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए, प्रकट होने को ही जन्म कहते हैं। तो भगवान की अभिव्यक्ति होती है, प्रकट होते हैं, जन्म कैसे, तो हम लोगों का जन्म होता है। तो हम भगवान को भी अपना मानते हैं, अपने भगवान है। तो अपना वही हो सकता है जो हमारे साथ एकता रखता हो। तो हम जन्म लेते हैं तो भगवान को भी जन्म खिलाएंगे हम, क्यों भगवान, भगवान हमारे साथ ही है। तो भगवान भक्तों की इच्छा के अनुसार जन्म की लीला करते हैं। वैसे हम लोग वैसे ही भगवान की लीला करते हैं। इस बात से इसका नाम जन्माष्टमी है, प्रकट होना भगवान का। वो सदा ही मौजूद रहते हैं। भगवान की बात देखी जाए तो भगवान क्या है, भगवान जो सदा रहते हैं और सब में रहते हैं और सभी भगवान में रहते हैं और भगवान सभी के हैं और सब समय में है, सब जगह है, वही भगवान हो सकते हैं। भगवान किसी जगह और किसी जगह न हो, किसी समय और किसी समय में न हो, किसी वस्तु में और किसी वस्तु में न हो, किसी व्यक्ति के और किसी व्यक्ति के न हो, ऐसे भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो सभी के हैं। अब वे भजन नहीं करते, भगवान के सन्मुख नहीं होते तो उनके सामने उनमें भगवान नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है। वे सामने भी है, उनके भीतर भी है, परंतु वे उनको देखना चाहते ही नहीं। इस वास्ते उनके सामने भगवान वैसे प्रकट होते नहीं। जो भगवान को चाहते हैं उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। परंतु भगवान एक प्रकट होने की ऐसी विलक्षण लीला करते हैं, वे सबके सामने प्रकट होते हैं। अब वे जान नहीं सकते, ये बात है अलग अलग। भगवान को कोई कितना जानता है, कितना उनको समझता है, ये उनके भाव के अनुसार है। परंतु तुम अवतार लेते हैं तो भगवान सबके सामने प्रकट हो जाते हैं। भक्ति करने वाले जो भजन करते हैं उनके लिए भगवान प्रकट होते हैं, वो और है। और यह सामान्य रीति से जो भगवान प्रकट होते हैं ये और है। और का तात्पर्य भगवान दूसरे ये नहीं है, मानो लीला भेद है, भगवान में भेद नहीं, भगवान के स्वरूप में भेद नहीं, तत्व में भेद नहीं, पक्षपात नहीं। सब कुछ होते हुए भी लीला भगवान पक्षपात भी करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु कहते हैं मैं सब में समान हूं, परंतु बगाड़ी लगाते हैं, परंतु ये भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तीर्थाप्यम्। भक्ति से मेरा भजन करते हैं उनमें मैं हूं, वो मेरे में है, ये एक विलक्षण तो आती है। तो भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, भगवान को चाहने वाले हैं, उनके सामने भगवान उनके भाव के अनुसार प्रकट होते हैं। जब दुनिया मात्र में आफत आ जाती है और किसी तरह से वहां का काम नहीं चलता तो भगवान प्रकट होते हैं। उस समय सब दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं तो भगवान वो प्रार्थना सुनते हैं। सुनर गंधर्व मृगर सर्वा जय विनती के लोग का सब मिल करके ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। और ये पृथ्वी है, अकुल आ जाती है तो ये गौ बनती है। वो गौ होकर के भगवान से प्रार्थना करती है कि महाराज मेरे पर भार बहुत बढ़ गया है। तो पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है तो भगवान पृथ्वी का भार उतारते हैं। भगवान की लक्ष्मी देवी भूदेवी दो देवियां हैं भगवान की खुद की। तो इसमें भगवान ये धरा कहती है कि मेरे पर्वतों का भार नहीं है, वनस्पति का भार नहीं है, जीव जंतु का भार नहीं है, भगवत भक्ति ही ने उनका भार होता है। मेरे जो दुष्ट है, दुराचारी है, भगवान से विरुद्ध है, उनका भार होता है। तो वो भार उतारने के लिए भगवान आते हैं। जो दूसरे वो भगवान वो भार कैसा पृथ्वी पर, पहाड़ भी पृथ्वी का अंग है, वृक्ष भगवान के अंग है, पृथ्वी के अंग है, और जितने जीव जंतु पृथ्वी से ही प्रकट होते हैं, पार्थिव शरीर है तो अंग है उनका। तो अपने गुणों का, अपने केसों का, अपने हाथों का, अंगों का अपने पर भार थोड़ा ही होता है। परंतु भगवान से विरुद्ध है, भगवान से द्वेष रखने वाले हैं, भगवान से भगवान को नहीं मानने वाले हैं, उनका बड़ा बोझ होता है पृथ्वी के। और पृथ्वी का बोझ का तात्पर्य संपूर्ण लोगों के लिए वे भार होते हैं। ऐसे भार हो जाते हैं, उन भार को दूर करने के लिए भगवान अवतार दे, वो भार अवतार गम भगवान पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार देते हैं। तो अवतार लेने का अर्थ क्या है, उतरना। जिस दर से बालक है उसको पढ़ाना होता है तो अध्यापक उस बालक की श्रेणी में आते हैं। तो वे लिखाते हैं तो बच्चे का हाथ पकड़ करके सिखाते हैं, क ख ऐसा सिखाते हैं, हाथ पकड़ अपने हाथ से लिखते हैं, उसे लिखाते हैं। चाहे वो आचार्य हो, शास्त्री हो, कितना ऊंचा विद्वान हो, पर बच्चे को सिखाएगा तो क बोलो बच्चा, क क वो भी क कर रहा है, वो भी क कर रहा है। तो उसकी श्रेणी में आकर उनको सिखाते हैं। ऐसे भगवान जब अवतार लेते हैं तो मनुष्य का अवतार तो मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं। छोटे बड़े ऊंचे नीचे भले बुरे जितने मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के सामने वैसे ही मनुष्य बन करके आते हैं, जिससे कि मनुष्य उनके साथ खेल सके, बात कर सके, ऐसी बात है। उस बात को लेकर भगवान अवतार लेते हैं। वो अवतार लेकर सबके सामने खेलते हैं, सबके सामने विचरते हैं। एकांत भगत जब भजन करता है तो उसके लिए भगवान प्रकट होते हैं, तो उसको ही दर्शन होते हैं। और जब भगवान स्वयं अपनी तरफ से अवतार देते हैं तो सबको दर्शन होते हैं। पर सबके दर्शन होते हुए सबके दर्शन नहीं होते, अपना जैसा जैसा भाव है वैसे ही बताते हैं। जैसे राम जी विवाह के समय गए तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देगी तैसी, उन भावना जैसी उसी भगवान की मूर्ति उनको दिखती है। तो जब भगवान अवतार लेकर के घूमते हैं तो उन जैसी जैसी उनकी भावना उसी अनुसार काम करते हैं। सब भगवान भाव के अनुसार उनके सामने प्रकट होते हैं, तो वैसे भावों के अनुसार उनका उद्धार होता है। और वे लोग होते हैं तो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान का रूप होता है वो सबका उद्धार करने वाला होता है। परंतु भगवान के भक्तों के सामने भगवान और तरह से प्रकट होते हैं, प्रकट होकर दर्शन देते हुए, सब लीला करते हुए, सबके सामने प्रकट होते हुए भी वे और तरह से होते हैं। कि और तरह से कैसे होते हैं कि जिस तरह से गंगा जी है उनमें कोई स्नान करे तो स्नान करने वालों का कल्याण होता है। इस वास्ते हमारे लिखा है महात्म बैसाख महात्म लिखा कि बैसाख के महीने जलदान करे, बैसाख के महीने गंगा जी में स्नान करे, तो बैसाख का बड़ा महात्म लिखा है। तो जैसे बैसाख का महात्म लिखा है ऐसे माघ का महात्म लिखा है कि माघ महीने स्नान करने का बड़ा महात्म है, कार्तिक के महीने स्नान करने का बड़ा महात्म है। परंतु उसमें फर्क है, बैसाख का स्नान करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, गर्मी छाई हो जाती है और गंगा जी का शीतल जल होता है। स्वर्गाश्रम जाते हैं तो वहां देखते हैं तो खूब उसमें बैठे रहे गंगा जी में, पी लें तो भीतर शांति बाहर शांति आनंद आता है। पर वहां भी माघ के महीने चले जाओ और स्वर्गाश्रम के सामने वहां गंगा जी में स्नान करो तो दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में होकर गंगा जी आती है। तो जैसे गंगा जी आती है ऐसे दोनों पहाड़ों के बीच में होकर हवा आती है, जैसे मनुष्य मुंह से फूंक देता है ऐसे पहाड़ों के भीतर और ठंडी हवा आती माघ के महीने, और वो ठंडा जल उस ठंडे जल में स्नान करते हैं तो हाथ की अंगुलियां काम नहीं करती, कपड़ा पकड़ नहीं सकते और शरीर में खून जम जाता है, ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं और बड़ी मुश्किल होती है नहाने में। तो माघ का स्नान बड़ा कठिन होता है, वैशाख का स्नान बड़ा सुगम होता है। महात्म वैशाख से माघ का कम नहीं, माघ के महात्म से वैशाख का स्नान उसका महत्व कम नहीं, परंतु स्नान दो तरह के होते हैं। ऐसे भगवान जब अवतार लेकर के और जब सब जगह लीला करते घूमते हैं तो जो सज्जन महात्मा पुरुष है भक्ति से भगवान का भजन करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको जो भगवान के दर्शन होते हैं वैशाख के स्नान की तरह। भगवान तो गंगा रूप है, महान पवित्र रूप है, पर उनका दर्शन होता है वैशाख के स्नान की तरह। और जो दुष्ट है जिनका पृथ्वी पर भार है, दुनिया के लिए भी बड़े घातक होते हैं, नाशक होते हैं, तो उनके सामने भगवान आते हैं, उनके सामने आते हैं तो वो भगवान का दर्शन तो करते हैं, परंतु वो माघ का स्नान है, दर्शनों का माध्यम तो माघ के स्नान और वैशाख स्नान दोनों को होता है, परंतु माघ का स्नान बड़ा कठिन है। ये घबरा जाते हैं, खरदूषण तीसरा आदि वे गए, फिर भगवान के सामने राक्षस असुर गए, तरह तरह के पूछना प्रकाशुर अघासुर आदि बहुत से गए, तो वे भी भगवान सामने गए, पर महाराज प्राण छूट गया उनका। अरे माघ में माघ में स्नान करने वाले प्राण थोड़े छूट रहे हैं, कठिनता पाती है, पर वाले के प्राण छूट गए, इतना कष्ट होता है, दुख होता है, माध्यम उनका ही होता है। ऐसे संत महात्मा भगवान के दर्शन करते हैं, वे वैशाख के स्नान की तरह आनंद पाते हैं, तो वो भी एक स्नान है, वो भी एक स्नान है, परंतु भक्ति से स्नान हो तो उसे भक्ति का रस आता है, और भक्ति नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं है, दुर्गुण दुराचारों से भरे हुए, दुष्टता से भरे हुए हैं, तो उनमें प्रेम नहीं है, वो प्रेम न होने से उनको बड़ा कष्ट होता है। माघ की तरह स्नान करे तो महात्म तो बरोबर होता है, परंतु भक्ति न होने से, प्रेम न होने से, और प्रेम न होकर फिर वैर होने से, फिर दुष्टों का जो जनता को दुख देने वाले होते हैं, असुर स्वभाव वाले, उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान तो वैसे ही प्रकट होते हैं, परंतु उनको बड़ा कष्ट होता है। भगवान ने जब अकाश बकाश आदि का नाश किया तो उनकी कैसी दशा हुई, पूतला गई है भगवान के देखने के लिए, तो वो गई तो है मारने के लिए, जहर लगाकर अपने थनों में जहर लगा कर गई। कृष्ण कह रहा था कि अभी जितने बालक जन्मे हैं उन बालकों में मेरा बैरी जन्म गया है, ये देवी ने कहा है, तो उसके कारण से वो सब गए, तो पूतला मारने के लिए गई, और बड़ी सुंदर स्वरूप धारण करके और दर्शन करने के लिए गई। यशोदा मैया ने देखा कि जैसे मैं दर्शन करती हूँ ऐसे ये भी बिचारी सखी आई है दर्शन करेगी, तो उसने पलना बता दिया, वो वहां जाकर के भगवान को थर पार खराने लगी। तो मन में उसे मारने का भाव था, तो भगवान तो मारने के भाव से भाई मार कर कर दे तो मर कर करोगी, ठन दिया मुख में तो बालक के तो मुख में दे दो मार, तो पीता ही है तो वो पीने लगे, तो पीने लगे तो बालक खेचता है दूध को पकड़ कर खेचता है, अब खेचे वहां दूध तो था नहीं, तो क्या खेचे, प्राण खेचे, चाय चाय करने लगे, मुंच मुंच प्रभारी, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, भगवान मेरा छोड़े नहीं, वे तो मुख से पकड़ लिया, हाथों से पकड़ लिया, दोनों चरणों को दिल खेचा जोर से, अब प्राण निकलने लगे, तो वो खड़ी हुई भूल गई, बड़ा सुंदर रूप धारण करी गई थी वो भूल गई, असली रूप प्रकट हो गया। तो भगवान देखो ये कहीं ब्रज में गिरेगी तो हमारे ग्वाल बालों के घर नष्ट हो जाएंगे, सारे जल नष्ट हो जाएंगे, तो उसे गई ऊपर जाकर बाहर जाकर जंगल में गिरी, तो जंगल के वृक्ष नाश हो गए, नष्ट नष्ट हो गए, बहुत विशाल जिसका शरीर, तो ऐसे नाश करने के लिए जाती है तो वो नष्ट होती है, पर नष्ट होने पर भी जसवंत की गत पाई लाल जी वो मुख देखने में आई, जो यशोदा मैया को गति देनी चाहिए वो गति भगवान ने पूतना को दी। तो माँ के स्नान में स्नान करने वालों का भी उद्धार होता है, कल्याण होता है, परंतु बड़ा कठिन काम है। जब भगवान ने प्राण खींचे और मरने लगे तो बड़ी घबराई है वहाँ, और कहते छोड़ दे छोड़ा छोड़ दे, छोड़े क्या, वो छोड़ेगा नहीं मरने के बाद भी, अभी क्या छोड़े, इस वजह से महाराज उनको दुख होता है। तो भक्ति होती है, प्रेम होता है मन में, तो उनको आनंद आता है। भगवान की कथा होती है उसमें भी जो भगवान से प्रेम करने वाले होते हैं उनके भक्ति कथा का बड़ा प्रेम होता है, आनंद आता है, जो जो प्रेम नहीं है उनको कथा सुहाती नहीं। तुलसी पूर्व पाप से हरिचर्चा न सुहाय, जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जाए, जर चढ़ जाता है तो भूख नहीं लगती, और भूखो देख सामने का तो हमें गंध आती है अन्न की, दूर रखो। तो भाई इतने बड़े कैसे हो गए बिना अन्न के, परंतु बुखार जब आ जाता है तो जो पोषण करने वाला जीवन देने वाला अन्न भी बुरा लगने लगता है, मिर्ची भी पित्त के जोर से कड़वी लगने लगती है। ऐसे भगवान की बात उनको कड़वी लगती है, तो उनकी जीभ खराब हो गई, भीतर अंतकरण मैला है, पाप भरा हुआ है, वो भगवान की बात सुन नहीं सकते। क्या ऊँघ है, क्या उठ दे, कह दे बात चलाए, क्या तो नींद आ जाती है, क्या उठ कर चल देते हैं और जल्दी बैठे रहते नींद आ जाती है, सुन नहीं सकते, पाप उनके ऊपर छा जाते हैं, उनका मन नहीं है सुनने का। भगवान की बात सुनने का मन हो तो उनके पाप दूर हो जाते हैं, नहीं तो भगवान की कथा में, भगवान के रूप में, भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में जिसका अच्छा भाव नहीं होता है तो उनको वो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। तो बुरा लगने पर भी भाई उद्धार तो होता है, फायदा तो होता है भगवान की कथा से, बनगुण की बड़ी मुश्किल होती है, उद्धार तो पूछना का हुआ परंतु बाद में प्राण छाड़ने पड़े, अकासुर बकासुर आदि, बकासुर आदि आया, केसी आया, कई ऐसे राक्षस आए, उनमें बड़ी मुश्किल हो गई। वे ब्रजवासियों को दुख देने के लिए आए परंतु बुरी बुरी मौत से मरे हुए, तो उनका मरना हो गया। हमारे व्याकरण में हन हिंसा गत्यो धातु आता है, हन धातु है हनन करना मार देना, उनके एक तो हन हिंसा होती है एक गति होती है, तो राक्षसों की वो हिंसा है पर वो गति है, गत्यर सर्ग यहाँ सिद्ध होता है कि सर्ग सुगति हो जाती है, तो हिंसा होती है वो हन करते हैं। ऐसे भगवान की लीला विचित्र होती है, जैसे भगवान अनेक रूप से जीवते हैं ऐसे भगवान की लीला भी अनेक रूप से होती है, उनके दर्शन अनेक रूप से होते हैं, ऐसे भगवान का नाम भी अनेक रूप से होता है। तो नाम भी सबको प्यारा नहीं लगता, उनको बुरा लगता है। एक हमारे परिचित सज्जन थे तो उनकी बात मैंने सुनी, उनसे बातें हुई तो हमारे साथ स्नेह रखते थे, तो उनसे मैंने कहा तुम मांस खाना छोड़ दो, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर कभी मिले तो हमारे आओ आप, मैंने मैं आप मेरी कीमत क्या कर देते हैं, मेरी कीमत मुर्दा से थोड़ी है, मुर्दा आप जितना प्यारा लगता है उतना मैं नहीं लगता, तो मैं मुर्दे से ही नीचा हूँ, फिर क्यों हूँ मैं, आप तो मुर्दा बहुत प्यारा है, जिस मरने के मुर्दे से छू जाए तो स्नान करो कपड़ा से, ऐसा आपको प्यार लगता है। जब वो मरे तो उनकी मैंने बात सुनी, क्यों दूसरे नाम कोई लेता है राम राम तो बड़े चिढ़ते हैं कि दूर हो यहाँ से, मत सुनाओ मेरे को, तो ये बात मैंने देखी है। एक बात मैंने सुनी, श्री जयदयाल जी के मित्र थे बद्रीदास जी गोविंद का, इन आपस में बड़ा प्रेम था, वो तो बद्रू बद्रू कहते शेर जी और वो जयदा कहते जयदा जयदा, आपस में ऐसा स्नेह था। तो एक दिन ये भाकुड़े की बात है, घूमते रहे चले गए, एक बहुत बूढ़ा बंगाली मछलियां मार रहा है, तो उनको जाकर पूछा रहे कितना बात है, बहुत पुरानी बात है, तो पूछा तो दिन भर मछली मारते चारा नहीं की मछली मारता चारा ना मिलता है, तो कि तुम मारते हो मछली मारते हो तुम हमारा कहना मानो हम तुम्हारे को चारा देंगे, तो उनको बुलाया वो आ गया, बूढ़ा है बेचारा घाम में खड़ा रहना पड़ता है कितना करना, वहां बैठ गया तुम राम राम करो, तो राम राम नहीं कह सका, कृष्ण राम ऐसे कई नाम बताए, अंत में हरि नाम हरे हरि 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 ऐसा हरि नाम आया और नाम दे नहीं सका, तो तुम हरि हरि करो दिन भर रहो तुम्हारे को चाराना का चावल दे देंगे, चाराना का चावल रोटी हो जाएगी। तो वो एक दिन आया दूसरे दिन आया तो आया ही नहीं, फिर तीस चार दिन देगा तो वहां फिर मछली मार रहा है, अरे तुम वहां मछली मारते हो कष्ट उठाते हो, गांव में रहना पड़ता है, वहां बैठे बैठे गांव में लोग तो बाबा हमारे से नहीं होता, न पार होते पार नहीं सकता हमारे से। तो ये पक्की देखी हुई बात है, भगवान की कथा स्वाद ही नहीं। भगवान की कथा में आने वाले कई लोग कहते हैं कि चलो कथा सुनो, तो उनको कोई रस नहीं आता। ये क्या है फालतू ऐसी बातें, वो फालतू दिखती है ये बातें, निरर्थक दिखती है, कोई रस नहीं। भौंरा एक काला भौंरा होता है, वो फूलों पर बैठता है, सूंघता है, फूल बड़े अच्छे लगते हैं। तो काला काला भौंरा होता है, एक काले काले गूंगलिया, ये गोबर के गूंगला होते हैं, गोबर है तो वे गूंगले होते हैं, जो गोबर होता है मनुष्य चट्टी होती है, वहां आते हैं घूमते, वहां आ जाते हैं, उनकी गोली बनाते हैं और चलाते हैं, वहां रस लेते हैं, कई उसमें प्रवेश होकर नीचे जमीन जाते हैं, फिर उस मेले को भीतर ले जाते हैं, धूल निकालते हैं, उसी में वे रस लेते हैं। तो कड़ाई वो होता है, कड़ाई भौरा होता है, अगर उनको सुगंध कर दे वो मर जाए, अगर भौरा उन भिष्टा में मर जाए, उन दोनों वो भिष्टा का कीड़ा होता है, वो भिष्टा में राजी होता है और वो महाराज सुगंधी में मर जाएगा, वो सुगंधी रहने वाला भौरा जा तो वो मर जाएगा उस समय, तो काले काले होते दोनों के, परंतु वो ग्राहक नहीं होता है। इस तरह से मनुष्य का रूप तो हाथ पांव आदि ऐसे ही दिखते हैं, परंतु उसके भीतर में वो गूंगले तेरे मेला ही अच्छा लगता है, लोगों को दुर्गंध आती है, दूर भगवत चाहते हैं, वे भीतर में जाकर के रस लेते हैं, भीतर वहां पर प्रेस होते हैं, जमीन में जाकर के मेले को ले जाते हैं, वेस्टा को ऊपर निकाल देते हैं, उसे बड़ा रस लेते हैं। अब उसमें रस आ तो भोरे को आना चाहिए, तो भोरे को रस आवे फूलों में तो उसको भी रस आना चाहिए, पर उनको रस नहीं आता, कारण कि उनकी प्रकृति वैसी है, इस तरह से प्रकृति है। इस दृष्टांत से एक बात विलक्षण और आती है कि मनुष्य जितने गए उन मनुष्यों में ऐसी शक्ति है, आप वो गोबर का जो गूंगला होता है उसको आप भंवरा नहीं बना सकते, परंतु सत्संग मिलने से सत सुंदर ही सत्संगति पाई, अस्थि संग मिल जाता है, वो बन जाता है, बदल जाता है, भंवरे की तरह सुगंधी का प्रेमी हो जाता है, क्योंकि मनुष्य शरीर है बड़ा कीमती है, विलक्षण है, ये तो सबको आनंद देने वाला एक मनुष्य जन्म है। तो मनुष्य जन्म में एक मस्ती आती है, एक आनंद आता है, ये भगवान के भक्ति का अधिकारी है, भगवान कृपा करके मनुष्य ये देते हैं। तो वे मनुष्य शरीर में नीचे नीचे प्राणी भी संत हो गए, चोर और डाकू भी संत हो गए, मनुष्यों को मारने वाले भी संत हो गए, दूसरों को दुख देने वाले भी संत हो गए, जेब कतरने वाले और सदा ही जीवों की घात करने वाले, जंगल में रहने वाले रात दिन बदी की होते हैं, वे भी सत्संग पाते वे संत बन जाते हैं। तो वे बन जाते हैं, घूंगला बदल कर भंवरा नहीं बनता, परंतु मनुष्य कैसे ही क्यों नीचा, वो भी ऊंचा बन जाता है भगवान की कृपा से। इस वास्ते भगवान के चरणों में प्रेम करो, मन लगाओ तो निहाल हो जाओगे, ऐसी विलक्षण बात है भगवान की। तो कैसी विचित्र बात है, कितनी अच्छी बात है, इनका अगर आचरण किया जाए, भगवान का भजन किया तो कैसी बढ़िया बात है। ऐसे भगवान का अवतार भी होता है, आज दिन की धर्माष्टमी है।